धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही, जैसे किसी टूटी आत्मा को सहला रही हो। कुछ देर बाद आर्यन थोड़ा पीछे हुआ, अपने आंसू पोंछे। चेहरा अब भी भीगा था, पर आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, दर्द से जन्मी हुई आग। सबसे पहले मुझे जय को अपने पास लाना है, उसने बेहद ठोस आवाज में कहा। जय अब उनके नहीं रहेगा, वो मेरे साथ होगा। फिर उसने मुट्ठी भींची, आकाश की तरफ देखा और उसकी आवाज में उबलता हुआ जुनून था। और उसके बाद मेरी बहन और बहनोई की मौत का बदला, विक्रांत ने जो किया है उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। सानवी ने उसकी आंखों का वो लाल तेवर देखा, दर्द, प्यार और बदला, तीनों एक साथ। लॉन की रात में दोनों के बीच बस खामोशी रह गई, लेकिन अब बात साफ थी, आर्यन टूटा नहीं है, वो बस जागा है। ऑफिस की बड़ी सी मेज के पीछे विक्रांत कुर्सी पर आधा लेटा आधा बैठा था। कमरे की लाइट धीमी थी, बाहर से शहर की रोशनी की तेज चमक शीशे पर पड़ रही थी। मेज के ठीक पास उसका असिस्टेंट जीवन खड़ा था, चेहरे पर एक खुरदरा स्माइल, आंखों में सतर्क था। जीवन, विक्रांत ने धीरे से कहा, आर्यन हमें लेकर शक कर रहा है, पर दिक्कत ये नहीं, हमारा दिक्कत ये है कि सच बाहर निकल गया तो सब खत्म। जीवन ने हाथ पर रखे बैड पर लिखे कुछ शब्दों को झट से स्कैन किया और बोला, सर हम इसे पलट सकते हैं, इल्ज़ाम अगर सही शख्स पर पड़ जाए तो केस ठप, हमने पहले भी ऐसे लोगों को घसीटा है। विक्रांत की आंखों में एक ठंडी चमक थी। ठीक है, लेकिन ये काम बहुत सोच समझ कर करना होगा, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ऐसा लगे कि पूरा सबूत उसी की तरफ खिंचे, कोई शक हमारे तरफ ना आए। जीवन ने गर्दन हिलाई, मैं कुछ लोगों से बात करवा दूंगा, रास्ते, गवाह और अगर ज़रूरत पड़ी तो चालान के कागज़ भी, पर सर जो मुखबरी की उसका भी पता लगाना ज़रूरी है, किसने हमें नुकसान पहुंचाया, किसने हमारे अंदरूनी मामलों को बाहर भेजा, वो रहस्य हमारी जीत हार तय करेगा। विक्रांत ने धीरे से काफ़ी भाव से कहा, बिल्कुल, जो भी हुआ मुखबरी हमें किसी ने की है, उसे ढूंढो, और जीवन जो भी करोगे चुपके से करना, किसी तरफ से भी आवाज़ निकली तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। जीवन ने एक बार गंभीर नज़र से विक्रांत को देखा और फिर सिर झुका कर चला गया, जैसे कोई योजना ठीक तरह से आकार ले रही हो। लिविंग रूम के बाहर लॉन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, फूलों की क्यारी में मंद रोशनी ने रात को नर्म सा बना रखा था। आर्यन और सानवी वहीं चुपचाप बैठे थे, जय ऊपर कमरे में सो गया था, बच्चों सी नींद अमन की तरह फैली हुई थी। आर्यन की आंखें अभी भी सूजी हुई थीं, उसने अपने आप को थोड़ा सीधा किया, सांसें गिनने लगा, पर उस आवाज में अब सुस्ती के साथ एक नई आग थी। सानवी ने उससे धीरे से कहा, आप बहुत ज़्यादा खुद को दोष मत दीजिए, जो हुआ वो अब बीत चुका, पर जो चाहूँ मैं आपके साथ हूँ। आर्यन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अब कड़क एक ठहराव था। सानवी, सबसे पहले मैं जय को सुरक्षित अपने पास ले आऊँगा, उसके बाद जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, विक्रांत उसे मैं सजा दूंगा, पर मैं जय को किसी खतरे में नहीं आने दूंगा। इंदर जैसिका के पास से निकलकर आर्यन के घर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर आता है, सामने के लॉन में हल्की पीली लाइट के नीचे उसे सानवी और आर्यन साथ बैठे दिखते हैं। सानवी थोड़ी झुकी हुई बैठी है, जैसे अभी अभी उसे दिलासा दे रही हो। आर्यन का चेहरा बता रहा था वो रोकर ही उठा है। इंदर के कदम धीमे पड़ जाते हैं, उसे खुद भी आज बहुत परेशानियां थी, लेकिन यहाँ हालात उससे भी ज्यादा भारी थे। वो दोनों के पास जाकर धीरे से पूछता है, जय सो गया क्या? सानवी ने हल्की थकी आवाज में कहा, हाँ सो चुका है, अभी अभी उसे सुलाया है। इंदर ने एक नज़र आर्यन की तरफ घुमाई, आर्यन तुम ठीक हो? आर्यन ने गहरी सांस ली, चेहरा संभालने की कोशिश की, हाँ मैं ठीक हूँ इंदर। सानवी दोनों को ऐसे देखती है मानो समझ गई हो कि आगे की बात वे अकेले करना चाहती हैं। तुम लोग बात करो, मैं जय को एक बार देखाती हूँ। वो धीरे से उठकर अंदर चली जाती है। अब लॉन में सिर्फ आर्यन और इंदर हैं। ठंडी हवा चल रही है और दोनों के बीच एक भारी खामोशी। इंदर ने धीरे से कहा, मैंने जैसिका से बात की है, उसका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यकीन नहीं करती कि विक्रांत ऐसा कर सकता है। आर्यन की सांस रुक सी जाती है, पर उसने कुछ कहा नहीं। इंदर आगे बोला, और सबूत भी तो नहीं है हमारे पास कि एक्सीडेंट उसी ने करवाया, भाई और भाभी का कातिल कोई और भी तो हो सकता है आर्यन। आर्यन की आंखें भर आती हैं, मगर वो आवाज दबाकर बोलता है, मैं सब साफ कर दूंगा इंदर, बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, लेकिन सबसे पहले मुझे जय को अपने पास लाना है, वो मेरा सब कुछ है अब। इंदर ने तुरंत उसका हाथ दबाया, मैं तुम्हारे साथ हूं आर्यन, जो भी करना हम साथ करेंगे, लेकिन जब तक साबित नहीं हो जाता कि विक्रांत ही कातिल है, हम उसे कातिल नहीं कह सकते। दोनों चुप हो जाते हैं, आंखों में दर्द, दिमाग में शक,
और दिल में एक खामोश आग। कुछ देर बाद इंदर ने धीरे से पूछा, और तुमने सानवी को अब तक नहीं बताया ना कि कृति वाली बात मैंने ही तुम्हें बताई थी। ये शब्द हवा को और भारी कर देते हैं। इंदर के अंदर कहीं गहरा दर्द था। वो नौजवान जो किसी के सामने कभी नहीं टूटा, आज बिखर चुका था। सानवी धीरे से उसका कंधा थामे रही, उसे रोने दिया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, सानवी से हल्का सा हटते हुए बोला, सबसे पहले मुझे जय को अपने पास लेकर आना है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक आग भी जल रही थी। और फिर मैं अपनी बहन और बहनोई की मौत का बदला लूंगा। विक्रांत को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उधर विक्रांत का खेल। विक्रांत अपने बड़े ऑफिस में बैठा था। उसके सामने उसका असिस्टेंट जीवन खड़ा था। आर्यन को हम पर शक है, विक्रांत ने मेज पर उंगली टिकाते हुए कहा, मगर मामला ऐसे हैंडल करना कि इल्जाम किसी और पर जाए, समझे? जीवन तुरंत सिर हिला देता है। बिल्कुल सर, सब सोच समझ कर होगा। और जो हमारी मुखबरी कर रहा है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। विक्रांत की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। इंदर का आगमन। इंदर जो जैसिका के पास रुका हुआ था, आखिर रात में आर्यन के घर आया। लॉन में आते ही उसने सानवी को आर्यन के साथ बैठे देखा। आर्यन अभी भी थोड़ा उदास दिख रहा था। इंदर खुद भी परेशान था, दिन भर से बेचैन। जय सो गया, वो दोनों के पास आकर बैठ गया। हाँ, सो चुका है, सानवी ने छोटे से मुस्कान के साथ जवाब दिया। इंदर ने ध्यान से आर्यन का चेहरा देखा। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, आर्यन बोला, लेकिन उसकी आवाज में थकान साफ थी। सानवी उठ खड़ी हुई। तुम लोग बैठो, मैं जय को देख लेती हूँ। वो अंदर चली गई। अब लॉन में सिर्फ आर्यन और इंदर थे। मैंने जैसिका से बात की, इंदर ने धीरे से कहा। उसका कहना है कि चाहे जो हो, विक्रांत ऐसा नहीं कर सकता, और सबूत भी नहीं है हमारे पास। भाई और भाभी का कातिल कोई और भी तो हो सकता है। आर्यन गहरी सांस खींचता है। मैं सब साफ कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे जय चाहिए। इंदर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब तक साबित नहीं होता कि विक्रांत कातिल है, हम उसे कातिल नहीं कह सकते। दोनों कुछ देर चुप रहे, हवा में सिर्फ रात की सरसराहट थी। इंदर ने फिर धीरे से पूछा, तुमने सानवी को बताया नहीं कि कृति वाली बात तुम्हें मैंने बताई थी? आर्यन ने इंदर की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो मैं उसे बता दूं? उसकी नजरें सीधी और गंभीर थी। इंदर घबरा गया। नहीं, वो मुझसे नफरत करेगी, शायद हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाए। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं हूं, अगर तुम्हें बताना होता तो अब तक बता ही चुके होते। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। इंदर ने राहत की सांस ली। इतने में सानवी वापस आई, उसके हाथ में एक ट्रे थी। वो बिना कुछ कहे उनके सामने खाना रख देती है। पहले कुछ खा लीजिए, आप दोनों ने कुछ नहीं खाया होगा। आप लोग खाएं, मैं सोने जा रही हूं। इंदर हैरान हो गया। तो क्या तुम यहीं रुक रही हो?
हाँ, सानवी ने सहजता से कहा, मैं यहीं रहूंगी, जय के पास। वो अंदर चली गई और दोनों लड़के लॉन में बैठे अपनी अपनी उलझनों में खो गए।